arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास, वाचक स्वर अनुज श्रीवास्तव।
मध्यकालीन भारत एवं विश्व, सामाजिक सामंतवादी व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, यूरोप में चर्च की स्थिति, अरब में इस्लाम धर्म का उदय एवं सिद्धांत। प्राचीन काल में एशिया, यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका में कुछ सभ्यताएं पनपी। बर्बर जातियों के आक्रमण के कारण 500 ईस्वी तक पश्चिम में रोम का साम्राज्य समाप्त हो गया, किंतु पूर्वी रोम साम्राज्य, जिसकी स्थापना 500 ईस्वी से पहले हो चुकी थी, लगभग 100 वर्ष बाद तक चलता रहा। उस समय पश्चिमी यूरोप बहुत छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था, किंतु कुछ विजेताओं के पतन और नए राज्यों के उदय के पश्चात विश्व के राजनीतिक मानचित्र में बहुत परिवर्तन आया। पश्चिमी यूरोप में परिवर्तन अधिक स्पष्ट थे। इस काल में वहां जिस सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का विकास हुआ, वो प्राचीन काल की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था से काफी भिन्न थी। प्राचीन यूनान और रोम में उत्पादन का अधिकांश कार्य इस काल में, पश्चिमी यूरोप में जो व्यवस्था विकसित हुई उसे सामंतवाद कहा जाता है। मध्यकालीन यूरोप। रोम के सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने रोमन साम्राज्य के पूर्वी प्रदेशों की नई राजधानी 330 ईस्वी में प्राचीन यूनानी नगर बेजेंटाइन में स्थापित थी। इन नगरों का नाम सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के नाम कॉन्स्टेंटिनोपल पड़ा। पश्चिम रोमन साम्राज्य बर्बर आक्रमणों द्वारा नष्ट हो चुका था, मगर 1000 सालों तक पूर्वी रोमन या बेजेंटाइस साम्राज्य का नाम बना रहा। बेजेंटाइस सम्राट ईसाई धर्म की जिस शाखा के अनुयायी थे उसे पूर्वी या ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च कहा जाता था। तुर्कों ने 1453 में बेजेंटाइन साम्राज्य के प्रदेशों को जीत लिया। रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात पश्चिमी यूरोप में बड़ी अव्यवस्था फैल गई। अनेक छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। सन 800 ईस्वी के लगभग शार्लेमन ने एक बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया, जिसमें आधुनिक फ्रांस, जर्मनी तथा इटली के कुछ भाग शामिल थे। उसकी मृत्यु के बाद ये साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। सन 1000 ईस्वी के लगभग एक नए साम्राज्य की स्थापना हुई। इसे पवित्र रोम साम्राज्य कहा जाता है। इसमें जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के छोटे बड़े राज्य शामिल थे। धीरे धीरे पश्चिमी यूरोप के अन्य भागों में भी कुछ नए राज्य पनपे। यूरोप में सामंतवादी व्यवस्था। यूरोप में मध्यकाल में जिस सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का उदय हुआ वो सामंतवादी व्यवस्था के नाम से जानी जाती है। मूलतः वो एक ग्रामीण व्यवस्था थी, जिसमें किसानों को अपने उत्पादन का एक हिस्सा लगान या कर के रूप में लोगों को देना पड़ता था, या बिना किसी भुगतान के मालिकों के लिए श्रम करना पड़ता था। पश्चिमी यूरोप में एक ताकतवर केंद्रीय सत्ता के अभाव के परिणाम स्वरूप ऐसी राजनीतिक संस्थाओं का उदय हुआ जिन्हें यूरोपीय सामंतवाद की एक प्रमुख विशेषता माना जाता है। संसार के अन्य भागों में राजनीतिक संस्थाओं ने एक भिन्न ढांचा अपनाया। कृषक। सामंत अपने अधिपतियों से भूभाग लेते थे। वस्तुतः वे स्वयं खेती नहीं करते थे, कृषक इनकी ओर से खेती करते थे। सामंती समाज में इन किसानों का स्थान सबसे नीचा था, यद्यपि वे जनसंख्या में सबसे अधिक थे। किसानों के भी कई वर्ग थे। पहला वर्ग स्वतंत्र किसानों का था। वे अपने अधिपति से जमीन प्राप्त करके उस पर खेती करते और इस प्रकार उसका प्रबंधन करते मानो वो उनकी ही भूमि हो। वे अपनी उपज का एक भाग जागीरदार को दे देते थे। कृषि दासों को कुछ निश्चित दिन अपने जागीरदार के खेतों में भी काम करना पड़ता था। शेष दिनों में उन्हें उन खेतों पर कार्य करने की छूट थी जो उन्हें अपने अधिपति से मिले थे। सामंती प्रथा के अंतर्गत किसानों में अंतिम किंतु सबसे अधिक संख्या वाला वर्ग सर्फ अर्थात दास कृषकों का था। बहुत से सामंतों के पास भूमि थी जिससे वे अपने लिए खेती करते थे, किंतु उन्हें ऐसे खेतों पर भी कार्य करना पड़ता था जो पूर्णतया उनके अधिपतियों के थे। सामंतवाद के द्वारा आरंभ में मध्यकालीन जीवन में व्यवस्था और सुरक्षा स्थापित हो सकी। सामाजिक और आर्थिक जीवन बाधा रहित चलता रहा। वहीं इसका दूसरा पक्ष था कठोर वर्ग प्रणाली, जिसमें आदमी अपने को दूसरे आदमी से भिन्न समझने लगा तथा एक दूसरे वर्ग से बिल्कुल अलग हो गया। इस वर्ग प्रणाली के कारण राजनीतिक एकता कायम न हो सकी। अभिजात्य वर्ग साधारण मनुष्यों को घृणा की दृष्टि से देखता था। उनको विरासत में मिले अधिकार ने एक व्यक्ति के शासन और अत्याचार को जन्म दिया। राजा भी बहुधा सामंतों पर नियंत्रण नहीं रख पाते थे, क्योंकि लॉर्ड बहुत शक्तिशाली हो गए थे और आपस में छोटे छोटे स्वार्थों के लिए लड़ते थे। राजा का सामान्य जनता से कोई संपर्क नहीं था। जनता पूर्णतया सामंतों की मर्जी पर छोड़ दी जाती थी। सामंतों में साधारणतया उत्तरदायित्व की भावना का पूर्ण अभाव था। उन्हें जनता के कल्याण की लेश मात्र भी चिंता नहीं थी। सामंतवाद के कारण आर्थिक जीवन में भी किसी की प्रगति नहीं हो सकी। किसान और दस्तकार जिस धन का उपयोग कठिन परिश्रम से करते थे, सामंत उसे भोग विलास के जीवन और लड़ाइयों में व्यर्थ खर्च कर डालते थे। नए तौर तरीकों की खोज को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था। लॉर्ड और चर्च के नेता दोनों ही अपने लिए नए प्रदेश और समृद्धियां प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए वे पवित्र युद्ध या धर्म युद्ध, जिसे क्रेसेड कहते थे, अथवा जिहाद करने के लिए प्रेरित हुए। 7वीं शताब्दी में अरबों के साथ संपर्क के फलस्वरूप विलास की वस्तुओं की मांग बढ़ी और पूर्व के देशों के साथ वाणिज्य व्यापार का विस्तार हुआ। धर्म युद्धों के कारण चर्च के काफी संपत्ति और साधन खर्च हो गए। फलतः धन इकट्ठा करने के लिए अनुचित तरीके अपनाए गए। अरबों के साथ संपर्क के अच्छे परिणाम हुए। अरबों ने उन्हें अपनी सभ्यता की कलाओं और विज्ञान से परिचित कराया। यूरोप वासियों ने कुतुब नामा का ज्ञान प्राप्त किया और कागज बनाने की कला सीखी। धर्म युद्धों के कारण ही अरबी भाषा से बहुत से शब्द अंग्रेजी भाषा में आए, जैसे लेमन, शुगर, सिगुर, सोफक, मुस्लिन, सॉटन, बाजार, अलजेब्रा, जीरो, साइफा, केमिस्ट्री आदि। मध्यकालीन यूरोप में चर्च। मध्यकाल में रोम कैथोलिक चर्च भी पश्चिमी यूरोप में उतना ही शक्तिशाली था जितना कि सामंतवाद। चर्च में सबसे ऊंचा स्थान पोप का था। उसे पृथ्वी और ईसा मसीह का प्रतिनिधि माना जाता था। जब कालांतर रोम के सम्राटों ने धीरे धीरे ईसाई धर्म को स्वीकार किया और आगे चलकर बर्बर सरदार भी इस धर्म के अनुयायी हो गए और पोप पश्चिमी यूरोप की ईसाई जनता का प्रमुख मान लिया गया। राजाओं की अपेक्षा पोप अधिक शक्तिशाली होते और वे राजा को अपना आदेश मानने के लिए बाध्य कर सकते थे। मध्यकालीन चर्च का योगदान। पूर्व मध्यकाल में केवल चर्च ही शिक्षा प्रसार के माध्यम थे। वे ही जनता को शिक्षा देते थे। प्राचीन कालीन यूनानी और रोमन सभ्यताओं के उत्कर्ष के समय अनेक पाठशालाएं विद्यमान थीं, जिनमें माता पिता बालकों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजते थे। वे पाठशालाएं पूर्व मध्यकाल में खत्म हो चुकी थीं। चर्च ने शिक्षा के प्रसार का जो कार्य किया वो नगण्य था। वास्तुकला। मध्यकालीन यूरोप में वास्तुकला के श्रेष्ठ उदाहरण गिरजाघर हैं। वे रोम के मंदिर बेसिलिका के अनुरूप बनाए गए थे, जैसे कि बेजेंटियम में थे। इनके बीच में विस्तृत हॉल होते थे, जिनके दोनों ओर स्तंभों की पंक्तियां होती थीं। छत गुंबदाकार और दीवारें ठोस और मोटी बनाई जाती थीं, जिससे कि वो भारी छतों को संभाल सकें। इसलिए गिरजाघरों के अंदर साधारणतया अंधेरा रहता था। इनकी निर्माण शैली सादी थी। 12वीं शताब्दी के आसपास एक नई वास्तु शैली का विकास फ्रांस में हुआ। इसे गोथिक शैली कहते हैं। मध्यकालीन भारत एवं विश्व। भवनों में नुकीली मेहराब होती थी और दीवारों में खिड़कियां बनाई जाती थीं। खिड़कियों से होकर अधिक प्रकाश इन भवनों में जाने लगा और खिड़कियों में लगे रंगीन शीशों के कारण इन भवनों की सुंदरता काफी बढ़ गई। अरब सभ्यता। अरब के लोग कई कबीलों में बंटे हुए थे जो मुख्य रूप से पशुपालन कर अपनी जीविका चलाते थे। विभिन्न कबीले जमीन पर कब्जे के लिए खासकर चारागाहों के स्वामित्व को लेकर आपस में लड़ते रहते थे। ईसवी सन के पहले 600 वर्षों के बीच अन्य देशों के साथ व्यापार काफी महत्वपूर्ण हो गया। अनेक अरबों ने अपने को विदेशी व्यापार में लगाया। व्यापार के द्वारा अरब लोग नए विचारों के संपर्क में आए। 7वीं शताब्दी में अरब में एक नए धर्म इस्लाम का जन्म हुआ। इस्लाम ने थोड़े ही समय में न केवल प्रतिद्वंदी कबीलों के बीच एकता की बल्कि उसके परिणाम स्वरूप एक बड़े साम्राज्य की स्थापना हुई और एक नई सभ्यता का उदय हुआ। अरब में इस्लाम का उदय एवं सिद्धांत। इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म सन 570 ईस्वी में अरब में मक्का नाम के स्थान में हुआ। बाल्यावस्था में ही उनके पिता की मृत्यु हो गई और उनके चाचा ने उनका पालन पोषण किया। जब वे 40 वर्ष के हुए तो उन्हें सत्य के दिव्य दर्शन हुए और वे पैगंबर बन गए। उस समय अरब में सब जगह अंधविश्वासों और अज्ञानता का बोलबाला था। मक्का, जहां मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, व्यापार और धर्म का केंद्र था। अरब निवासी वहां बनी एक पवित्र इमारत में लगे आयताकार काले पत्थर की पूजा करते थे जिसे वे काबा कहते थे। ये काबा पत्थर आज भी मक्का में देखा जा सकता है। बहुत से मुसलमान आज भी मक्का तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। दिव्य दर्शनों से मोहम्मद साहब को पूर्ण विश्वास हो गया कि अल्लाह ही एकमात्र ईश्वर है और वे ही ईश्वर के पैगंबर हैं। उन्होंने मूर्ति पूजा का निषेध किया। इसी कारण बहुत से धनी व्यापारी उनके शत्रु हो गए। अंततोगत्वा स्थिति इतनी खतरनाक हो गई कि उन्हें मक्का छोड़कर मदीना में शरण लेनी पड़ी। मदीना के निवासियों ने मोहम्मद साहब का हार्दिक स्वागत किया। ये घटना सन 622 ईस्वी की है। इसे हिजरी कहते हैं, जिसका अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। मुस्लिम पंचांग का ये पहला वर्ष माना जाता है। इस्लाम के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को सर्वशक्तिमान अल्लाह में और ईश्वर के पैगंबर मोहम्मद के शब्दों में आस्था रखनी चाहिए। ईश्वर की इच्छा के सामने मनुष्य की कोई शक्ति नहीं है, अतः मनुष्य को ईश्वर की इच्छा के आगे झुकना ही श्रेयस्कर है। इस्लाम की धर्म पुस्तक कुरान है। मुसलमानों का विश्वास है कि इसमें ईश्वर के जो शब्द मोहम्मद को देवदूत जिब्राइल द्वारा प्राप्त हुए थे, ज्यों के त्यों लिखे हुए हैं। ये धर्म ग्रंथ कई अध्यायों में बंटा हुआ है जिन्हें सुरा कहते हैं। इसमें अनेक गाथाएं और परंपराएं संग्रहित हैं जिनके कारण अरब निवासी मोहम्मद साहब की शिक्षाओं को सरलता से समझाकर उन पर आचरण कर सकें। मुसलमान कुरान के अतिरिक्त मोहम्मद साहब की जीवनचर्या और उनके उपदेशों से भी शिक्षा लेकर उनका अपने जीवन में आचरण करते हैं। जीवनचर्या का वर्ण सुन्नत में और उपदेशों का संग्रहण हदीस में है। ये सही आचरण के लिए मानक निर्धारित करते हैं। इस्लाम धर्म के सिद्धांत। पहला, एक ईश्वर पर विश्वास करना। इस्लाम धर्म में एक ईश्वर पर विश्वास किया गया है। अल्लाह के समकक्ष किसी दूसरे की तुलना नहीं की गई है। दूसरा, मूर्ति पूजा का खंडन। इस्लाम धर्म के मानने वाले अनेक देवी देवताओं पर विश्वास नहीं करते तथा मूर्ति पूजा के विरोधी हैं। आत्मा का सिद्धांत। अल्लाह ने मनुष्य को जन्म दिया है तथा सत्य का भी अधिकार उसी का है। कब्र में हिसाब लेने पर विश्वास किया है। एकता की भावना पर जोर। सभी ईश्वर के बंदे हैं, सभी को भलाई करनी चाहिए तथा भाईचारे की भावना को इस्लाम महत्व देता है। मुसलमानों के 5 कर्तव्य या फर्ज। पहला, कलमा। दूसरा, नमाज। तीसरा, रोजा। चौथा, जकात। और 5वां, हज।
अरपा रेडियो .com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।